प्रभुति जो मोहदोए
प्रभुति जो मोहदो
संत समागम हरि कथा
संत समागम हरि कथा
मो घर निश दिन होए
मोर निश दिन
हरि हरि
ये होली को उत्सव कार्यक्रम है। सामवेद में ऋतुओं के विषय में वर्णन आता है। ये चार वेद भारतीय संस्कृति का चार स्तंभ है। भगवान राम के पहले वेद थे, भगवान कृष्ण से पहले वेद थे, भगवान राम के गुरु दशरथ के गुरु ने वैदिक रीत बताई और यज्ञ याग किया और भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो मानना पड़ता है कि इस सनातन धर्म हिंदू धर्म की स्थापना किसी पीर पैगंबर ईश्वर के पुत्र ने नहीं की, साधु संत ऋषि मुनियों ने भी नहीं की, यहां तक कि श्री कृष्ण ने अथवा श्री राम जी ने भी इस सनातन धर्म में हिंदू धर्म में अवतरण किया और इसका अमृत अपनी रीत भात से अपनी भाषा से लोगों तक पहुंचाया। मनुष्य के जीवन में जितना दिव्य वैदिक ज्ञान होता है, जितना धर्म का ज्ञान होता है, जितना धर्म के अनुकूल व्यवहार होता है, उतना ही वो सुदृढ़ होता है, संपन्न होता है और अपने लिए औरों के लिए सुखद होता है। जितना मनुष्य वैदिक ज्ञान से दूर होता है, चाहे किसी देश में रहे, चाहे हिंदू धर्म को माने चाहे न माने, लेकिन वैदिक ज्ञान की बात जितनी जिसके जीवन में होगी उतना वो स्वस्थ रहेगा, उतना वो प्रसन्न रहेगा, उतना उसका अंतर आत्मा का सुख छलकेगा, उभरेगा। सामवेद में आता है, वसंत इन्नु रत्नयोः ग्रीष्म इन्नु रत्नयः वर्षापिन्नु शरदोः हेमंतः शीर्षरः इन्नु रत्नयः। निश्चय ही वसंत हमारे लिए रमणीय हो, अभी हम वसंत ऋतु में जी रहे। ये वसंत उत्सव हमारे लिए वसंत ऋतु सुखदायी हो। कैसे सुखदायी हो? कि हमारा खान पान ऋतु के अनुसार अदल बदल हो जाए तो इस ऋतु का मादक आनंद उल्लास मस्ती हम ले सकते हैं। अगर इस वसंत ऋतु में हमने सर्दी की नाई गलिष्ठ पदार्थ खाए, चुपड़े चुपड़े खाए, पाक खाए अथवा दही खाई, किसी से दुश्मनी हो तो होली के दिनों के आसपास उसे दही खिला दो और खूब मीठा और भारी खिला दो, मरे नहीं तो बीमार तो जरूर हो जाएगा। सेखन खिला दो, भारी खुराक वसंत ऋतु में पचेगा नहीं। हमारे लिए वसंत ऋतु सुखदायी हो। जाड़ों में सर्दियों में जो हमने शरीर के बांधे को मजबूत बनाने के लिए खुराक खाए, उससे जो ऊर्जा और शक्ति बनी, उसके साथ साथ शरीर ने कफ भी संग्रहित किया, सूर्य के वसंत ऋतु में सूर्य के सीधे किरण धरती पर अब शुरू हुए, ग्रीष्म ऋतु आएगी गर्मी तो नाड़ियों का कफ पिघलकर जठरा में जाएगा, तो जठरा की जो पाचन शक्ति है पहले की अपेक्षा मंद हो जाएगी। अपाचन शक्ति मंद और फिर खाए श्रीखंड अथवा दही, मेरे को किसी ने कर दिया है, बड़े मियां किसी ने नहीं किया, तूने तेरी जात को किया, क्योंकि वैदिक ज्ञान नहीं है। जय राम जी की। वैदिक ज्ञान आपके ऋतु परिवर्तन के साथ आपके खानपान के परिवर्तन की सलाह देता है। अभी विज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य को फ्री सोसाइटी की जरूरत है, फ्री सोसाइटी। लेकिन हमारे वेदों ने तो हजारों लाख वर्ष पहले फ्री सोसाइटी की जरूरत शब्द नहीं कहा, लेकिन मनुष्य फ्री सोसाइटी के बाप का आनंद ले सके ऐसा होली का उत्सव रख दिया। कल सुबह होली, होली और धुलेटी। इन दिनों में तो फौज का साधारण हवालदार, साधारण सिपाही और ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर अपना पद होदा का अहम भूल जाता है और साधारण अपनी साधारणता की ग्रंथि छोड़कर एक दूसरों पर रंग डालते हैं। हास्य विनोद और कूद फांद और उल्लास का उत्सव ये वसंत उत्सव, होली का उत्सव है। इन दिनों में कफ पिघल पिघल कर जठरा में आता है, इसमें हास्य विनोद कूद फांद आदि से वो जठरा प्रदीप रहे और तुम्हारे शरीर का कफ पिघल पिघल के पच पच के नाड़ियों को शुद्ध कर दे और कफ का दोष, कफ का प्रकोप शरीर को सताए नहीं। इस प्रकार जो व्यवस्था है ये वैदिक व्यवस्था है। वसंत हमारे लिए सुखद हो, वसंतम इन्हु रत्नय हो, ग्रीष्म इन्हु रत्नया, हमारे लिए गर्मी भी सुखदायी हो, गर्मी में भी हमारा शरीर सुखद हो, सुदृढ़ हो, निश्चय ही रम वसंत रमणीय हो, तो वर्षा भी हमारे लिए रमणीय हो, हमारे लिए सभी ऋतु रमणीय हो, हमारे लिए सभी दिन रमणीय हो, हमारे लिए सभी कर्म रमणीय हो, हमारे लिए सभी देव सुखद हो और हमारे लिए सभी विचार परमात्मा परक हो, क्योंकि हम परमात्मा की सनातन संतान है, हम सुखद संतान। हम अपने ज्ञान को, अपनी चेतनता को, अपने आनंदता को उभारते रहे। हिंदू संस्कृति में 40 उत्सव है छोटे मोटे, इस्लाम में और ईसाइत में 6-7 उत्सव हैं, लेकिन उनमें एक उत्सव शोक का है। मुहर्रम के उत्सव में लोग अपने को मारते हैं, रोते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति में ये कहा गया है कि तुम्हारे आत्मा में शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। हर्ष और शोक मन का विकार है, तुम मन नहीं हो, मन बदलता है, तुम बदलने वाले को देखने वाले, तुम जीवात्मा परमात्मा के सनातन स्वरूप हो, इसलिए शोक की खाई में गिरने की तुम्हारे को कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो सामवेद कहता है वसंत इन्हु रत्नय हो, ग्रीष्म इन्हु रत्नय, वर्षा इन्हु शरदो हेमंत, शिशरा इन्हु रत्नय, निश्चय ही वसंत रमणीय हो, हमारे लिए सुखदायी हो, निश्चय ही ग्रीष्म हमारे लिए रमणीय हो, निश्चय ही वर्षा और उसके पीछे आने वाली शरद और हेमंत और शिशर हमारे लिए सभी ऋतुएं रमणीय हो। रमणीय तब होगी जब ऋतुओं का ज्ञान होगा, ऋतुओं के खानपान का ज्ञान होगा और ऋतुओं में होने वाले उपद्रवों का ज्ञान होगा। अब कफ पिघलता है, अगर इन दिनों में तुमने भारी खाया तो क्या होगा पता है? बुखार आने की संभावना है, क्योंकि पाचन मंद और भारी खाया, आम बढ़ जाएगा, कच्चा रस बढ़ जाएगा, बुखार आएगा, सर्दी होने की संभावना है, खांसी होने की संभावना है, चेचक और दस्त उल्टी आदि होने की संभावना है, टॉन्सिल होने की और सिर भारी होने की, सुस्ती अति और आलस्य अति होने की संभावना है। वर्ष भर में इतनी ज्यादा नींद किसी दिनों में नहीं आती जो इस वसंत के ऋतु में आती है। तो जठरा की मंदता को दूर करने के लिए भुने हुए चने, धानी, ताजी हल्दी, ताजी मूली, अदरक, पुराने जौ, पुराने गेहूं, मूंग, गन्ना, गन्ने का रस। मैंने संचालक को पहले कह के भेजा था कि होली का उत्सव हो तो आश्रम में गन्ने का रस सस्ते में सस्ता मिलना चाहिए और सभी को मिल पाए उतना गन्ने का स्टॉक होना ही चाहिए। 4 ट्रकों का स्टॉक कर रखा है क्योंकि वसंत उत्सव है। ये दिसंबर की शिविर नहीं है, मार्च की शिविर है। और आज सुबह तुम्हारे को नाश्ते में धानी दी गई थी। जो कफ पिघला है, जठरा में आए, धानी उसको तुरंत शोषित कर दे ताकि आपका स्वास्थ्य आने वाले 4 महीनों तक अच्छा बना रहे। तो हमारे लिए वसंत सुखदायी तब होगी जब हम ज्ञान के अनुसार खान पान को और आहार व्यवहार को थोड़ा स्वीकार कर लेंगे। इन दिनों में जिसको ज्यादा कफ है अथवा दमा है, खांसी है, टीबी है, ऐसे लोगों को और ज्यादा कफ जिनका शरीर संग्रह कर बैठा ऐसे लोगों को नागर मोथा या सौंठ का उबला हुआ पानी हितकारी है, कफ नाशक है। इन दिनों में मालिश करके फिर उबटन लगा दे चने के आटे की, आंवला अथवा त्रिफला का सूखा चूर्ण मिला दे और उबटन लगाकर गुनगुने पानी से शरीर को नहलाए, शरीर स्वस्थ रहेगा और दोष जो रोग के रूप में आने वाले वो दोषों के कण वैसे ही शरीर से निकल जाएंगे। इन दिनों में खाली पेट हरड़ और शहद का मिश्रण थोड़ा सा ले, इससे भी पेट साफ और कफ के द्वारा जो बीमारियां होती है उनको भगा दिया जा सकता है। इन दिनों में अगर किससे दुश्मनी हो तो उसे खूब ठंडा पानी पिलाओ, खूब आइसक्रीम खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, मैदे की चीजें खिलाओ, दही और खमीर वाली चीजें खिलाओ तो उसकी सत्यानाश हो जाएगी। उसके लिए वसंत ऋतु सुखदायी नहीं दुखदायी होगी, लेकिन इन चीजों से परहेज करेगा तो उसकी वसंत ऋतु सुखदायी हो जाएगी। ये केवल हमारा वैदिक ज्ञान शरीर की तंदुरुस्ती की ही बात नहीं बताता, आपके मन की प्रसन्नता की बात तो बताता है, लेकिन मन की प्रसन्नता ही तक ये वैदिक वाणी रुकती नहीं, ये बुद्धि की ऊंचाइयों को भी बढ़ाने की बातें और तरकीबें और प्रयोग बताता है। इतना ही नहीं, बुद्धि उनकी ऊंचाइयां जिससे होती है उस ऊंचे में ऊंचे परमात्मा के सत को, परमात्मा की चेतनता को और परमात्मा के आनंद को तुम्हारे व्यावहारिक जीवन में उभारते उभारते परमार्थिक मोड़ देकर जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता से मिलाने की खुशखबरियां देने वाला ये वैदिक ज्ञान है। आठ प्रकार के कर्म करो तो आपका तेज बढ़ जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पाप क्षीण होते जाएंगे, पुण्य बढ़ता जाएगा, तो आपका प्रभाव, आपका तेज बढ़ता जाएगा। मेरा एक जगह पर सत्संग था, एक सन्यासी बाबा आज से 30 साल पहले वाराही है भाभर के पास दिशा रहता था तब, तो वहां लोग सत्संग सुने, एक साधु आए और साधु बाबा मेरे निवास पर आए, फुट फुट कर रोए, बापूजी मैं लुट गया, मैं फलानी फलानी इलाके में रहता था, मेरा आश्रम है, मेरे को लोग भगवान करके मानते थे, लेकिन अब वही लोग मेरी निंदा करते, मेरे सामने नहीं देखते, मेरा सर्वस्व लुट गया, बापूजी मेरे साथ क्या हो गया। मैं थोड़ा सा जिसमें वेद भगवान कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा में जो चैतन्य है, प्रज्ञा जहां से स्फुरित होती है, प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, गुरु ने जो सिखा रखा था, कृपा करके जो द्वार घर बता रखा था, उस घर में मैंने गोता मारा। और मैंने उस वृद्ध साधु को कहा, मेरी उम्र उस समय 30 साल की रही होगी, 30 साल के युवक ने 60-70 साल के सन्यासी को कहा कि महाराज आपने त्राटक करके एकाग्रता का धन कमाया था और फिर कोई आ गया और आपने पानी में निगाह डाली, संकल्प किया, उसको दिया, वो ठीक हो गया। किसी की कोई तकलीफ थी, आपने प्रसाद उठाकर दे दिया, उसमें आपका संकल्प, आपके वाइब्रेशन, उसका काम हो गया। आप खर्च करते गए और कमाई आपकी बंद हो गई। तो जैसे सेठ खर्च करे आमदनी खत्म तो सेठ दिवालिया हो जाता है, ऐसे आपने ईश्वर के साक्षात्कार में अपनी साधना को नहीं लगाया लेकिन वाहवाही में लगाया, इसलिए वो साधना का धन खत्म हो गया। तो जैसे नींबू निचोकर आदमी फेंक देता है अथवा गन्ने से रस निकाल कर कुछ इधर को डाल देता है, ऐसे ही समाज ने आपको डाल दिया। बोले बापू आपको कैसे पता चला? ये भी कोई बात है। सारे पते और सारी खबरें मन बुद्धि को जहां से मिलती है उसकी गहराई में जो बैठा है वो एक का एक है। ईशावास्यम मिदम सर्वम यत किंचितम जगतम जगदा तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कश्चित सिद्धिर्तनम। सारा जगत उस ईश्वर की सत्ता से, ईश्वर की चेतना से ओत प्रोत भरा है। त्याग से भोगो, संयम से रहो और धर्म के अनुकूल रहो। धर्म तो ये था कि एकाग्रता हुई, एकाग्रता से मन में सामर्थ्य जहां से आया उस परमात्मा के नाते काम करना था, लेकिन वाहवाही के नाते काम किया। ईश्वर का यशगान करना था और ईश्वर के तरफ लोगों को लगाना था, लेकिन कुछ और कुछ हो गया। तो इस होली का उत्सव से आप लोग पक्का मान लो कि यह वसंत उत्सव शरीर को तंदुरुस्त, मन को प्रसन्न, बुद्धि को बुद्धिदाता में सम रखने की खबर देने वाला उत्सव। होली जो हो गई सो हो गई, अब पुरानी बातों को याद करके अपने चित्त को खपाओ मत। लोग पुराने दुख को याद करके दुखी हो जाते और पुराने सुख को याद करके भी दुखी हो जाते। एक सेठ था, बाबा जी को घर ले गया, रसोई ने रसोई परोसी, रसोई खाई तो कहीं किसी सब्जी में ज्यादा नमक था। सेठ ने जोरों से थाली पछाड़ी, तेरे को पता था मेहमान बाबा जी संत मेरे घर, और इतना खारा खारा कर दिया। चार सब्जी तो ठीक बनाई, बेवकूफ पांचवी सब्जी में इतना नमक डाला, सेठ बरस पड़े, खाना खराब कर दिया। बाबा जी को हाथा जोड़ी किया, महाराज कल हमारे घर आप जरूर आए, आज मैं आपको भोजन खिलाने में सफल नहीं गया, मेरे को दुख हो जाएगा। बाबा जी हाँ बोल दी। दूसरे दिन बाबा जी आए और रसोई ने रसोई परोसी, दाल बराबर तुअर की दाल ठीक उपाली हुई, मूंग की दाल बढ़िया है, करेला सुंदर बना हुआ है, तुअर की दाल ठीक बनी, तूरी की सब्जी बढ़िया है। भोजन के पहले थोड़ा अदरक और हरी हल्दी, ताजी हल्दी उसने संवार के रखी है, वो भी सेठ ने खाई, उसमें भी नमक ठीक है। सेठ क्रोध से लाल आग हो गए, रसोई की भेंट पकड़ी के नड़ाए, बदतमीज, जब इतनी बड़ी हार रसोई तू बना सकता था तो कल कहां मर रहा था। ये हंसी मजाक का उत्सव है, होली का उत्सव है। सेठ ने माइके नहीं पकड़ी थी लेकिन मुझे पकड़नी जरूरी लगी। कूदने फादने हास्य विनोद और आह्लाद बढ़ाने वाला वसंत उत्सव है। अब कल बढ़िया नहीं बना था उसके लिए सेठ दुखी थे और आज बढ़िया बना सके और कल बढ़िया क्यों नहीं बनाया इसके लिए दुखी। मूर्ख आदमी सुख में भी दुख और दुख में भी दुख, लेकिन बुद्धिमान सुख में भी सुख और दुख में भी सुख, और दोनों पर पैर रखकर अपने दिल में सदा वसंत उत्सव कर लेता है हर हाल में मस्त। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिलाकर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, कभी चबावे चना चबीना तो कभी लपटा ले खीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, दाल बगड़े तो वांदो नहीं, अथणु बगड़े तो वांदो नहीं, धाणी बगड़े तो वांदो नहीं, सर कपड़ा बगड़े तो वांदो नहीं, घरेणा बगड़े तो वांदो नहीं, रुपयो बगड़े तो वांदो नहीं, पण तमारू हयू बगड़वा देशो मां हैया मां हरी नो आनंद उभारो अने बेड़ो पार करायो। वसंत हो इनु रत्नयो हो, ग्रीष्म इनु रत्नया है, वसंत ऋतु हमारे लिए सुखदायी हो, हे गर्मी ऋतु हमारे लिए सुखदायी हो। इस ऋतु में अगर तुम्हें स्वस्थता की कुछ बातें और भी समझ में आ जाए, अमल में आ जाए, तो तुम्हारे लिए ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु भी सुखदायी हो जाएगी। 15-20 नीम के कोमल पत्ते सुबह चबा चबा कर एक दो काली मिर्च मिला के चबा के पिए, खाएं और ऊपर पानी पिए। ये प्रयोग 15-20 दिन करें 20 पत्तों का, तो आपको मलेरिया या दूसरे बुखार या और छोटे मोटे रोग जल्दी से पकड़ेंगे नहीं, आए तो वहां टिकेंगे नहीं, जैसे आए वैसे ही जल्दी चले जाएंगे। अगर संभव हो तो 7 दिन या 15 दिन तक नीम के फूलों का रस थोड़ा रोज पिए सुबह खाली पेट, फिर तुरंत दूध चाय न पिए 2-2.5 घंटे तक, तो फिर तुम्हारा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने में दूसरी भी मदद ले। तो इन वसंत ऋतु में आप अलूणा भोजन करें, लून बिना का, निमक बिना का। इससे क्या होगा, निमक कम वाला भोजन करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, हाई बीपी आदि का रोग हावी नहीं होगा, और जिनको हाई बीपी है उनको अंग्रेजी दवाओं की मुसीबत से बचाने के लिए एक सुंदर उपाय, सफल उपाय, खर्च खास नहीं और फायदा पक्का। हाई बीपी के जो भी बीमार हो या मरीज हो उनके लिए ये आशीर्वाद रूप है आज की ये हाई बीपी मिटाने की बात। हाई बीपी की तकलीफ है, क्या करो, एक दाना किशमिश बस, हाई बीपी मिटाने बापू क्या आओ, बस मिटेगा पक्की बात, नहीं मिटे तो पैसे वापस, जितना भी तुमने द्राक्ष के पीछे खर्च किया वापस ले जाना पैसे। एक दाना किशमिश गुलाब के पानी में भिगा दी सुबह रात को और सुबह चबा के खा ली, पानी उतना ही जितना भीग जाए, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, तो छठे दिन 6, सातवें दिन 7, ऐसे 21 दाने तक चले जाओ, बस हाई बीपी शांत करने का, सदा के लिए उसकी जड़ काटने का सुंदर उपाय। 10-15 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, फिर 21 दिन का कोर्स किया, ऐसे 2-3 कोर्सों में आपकी हाई बीपी तो चली जाएगी, और भगवान नाम जप के अगर लोगे तो पाप ताप भी मिटने लगेंगे। अगर इस वसंत उत्सव में, वसंत ऋतु में आपने निमक बेलूणा भोजन किया, बिना निमक का कुछ दिन तक भोजन किया, तो त्वचा के रोग नहीं होंगे, अगर है तो वे मिटने लगेंगे, हृदय की तकलीफें कम होने लगेगी, किडनी स्वस्थ होने लगेगी, और हाई बीपी होगी तो मिटने लगेगी, और नहीं होगी तो जल्दी से वो आएगी नहीं। 4 रात्रियां सनातन धर्म ने चुनी है, जिन 4 रात्रियों में ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव, किरणों का प्रभाव धरती पर कुछ विलक्षण पड़ता है, उन 4 रात्रियों में अगर जप ध्यान हो तो उसका फल अनंत गुना होता है। वसंत ऋतु में एक खास बात ध्यान देने योग्य है कि इन ऋतु में रात्रि को ज्यादा जगे नहीं और दिन को सोए नहीं। दिन को सोएगा तो कफ वृद्धि होगी, दही खाएगा तो कफ वृद्धि होगी, मीठे पदार्थ खाएगा तो कफ वृद्धि होगी। वैसे ही कफ पिघलकर जठरा में आ रहा है और वृद्धि हो तो जठरा एकदम मंद हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। तो किडनी की तकलीफ दूर रहे, हृदय मजबूत रहे, हाई बीपी ना हो, त्वचा के रोग ना हो और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, अगर आप ये चाहते हैं तो नमक की थोड़ी सी मात्रा कम कर दो अथवा बेलूना भोजन कर दो। आश्रम का जो भोजन भंडार विभाग है, कान खोल के सुन ले, नमक कम, नींद दोपहर को नहीं। हाँ, रात पाली है, कोई बेचारा नौकरी करता है उसकी बात अलग है, बाकी 10-15 दिन संभाल ले तो उसके लिए वेद का वचन साकार हो जाएगा। वसंत इन्नु रत्नयो हो, ग्रीष्म इन्नु रत्नया, ग्रीष्म भी उसमें उसके लिए सुखद हो जाएगी। वर्षा इन्नु शरदो, हेमंत शीर्षरा इन्नु रत्नया। दूसरी बात, होली खेलते सूर्य के सीधे किरण धरती पे पड़ते हैं जिससे हमारा कफ तो पिघलता है और जठरा थोड़ी मंद होती है। सप्त धातुओं में और शरीर के सप्त रंगों में एक प्रकार की हिलचाल हो जाती है। वसंत उत्सव मनाने के पीछे ऋषियों की खूब खूब ऊंची समझ ने लोगों का भला किया। न जाने इन ऋषियों की ऊंची समझ ने कितने रोगियों को निरोग बनाने का महान कार्य किया। न जाने इन संत पुरुषों के सत्संग ने कितने अशांत हृदयों को शांति दी, कितने टूटे दिलों को जोड़ा और कितने खिन्न मनों को अमृतमय बनाया और कितने अशांत जीवन को शांतिमय और कितने शांत जीवन को परमात्मामय बनाया, उसकी गिनती मैं नहीं कर सकता। ये भारतीय संस्कृति के उत्सव गजब के, वैदिक ढंग से जीवन जीने वालों का मानसिक तनाव खिंचाव होता ही नहीं। विदेश में कहते हैं कि 10 आदमी के पीछे 7 आदमी मानसिक तनाव में परेशान है, लेकिन मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि मेरे पास हजारों हजारों लाखों लाखों भक्त हैं, उसमें से कोई ही बाहर से भक्त होगा तो मानसिक तनाव में होगा, बाकी सचमुच में जिसने नाम दान लिया मानसिक तनाव से वो मुक्त है मेरा भक्त। मेरे पास कई कई राजनेता और कई दूसरे लोग आते हैं कि बाबूजी आप लोगों को जरा बोलो कि प्रेम से रहें, धर्म के नाम पर झगड़े ना हो। मैंने क्या, हमारे पास जो आते हैं वे धर्म के नाम पे झगड़े नहीं करते और हमारे पास जो आते हैं उनके संग में आने वाले भी धर्म के नाम पे झगड़े नहीं करते। एतत् पुष्पम कफम पित्तम कुष्ठम दाहम तृषाम अपीहि वातम स्वेदम रक्त दोषम मूत्र कृच्छच नाशयेत। वैदिक ढंग से मनाई हुई होली, विद्यार्थी को जब गुरुकुल में भेजा जाता था तो उसे यज्ञोपवीत देते थे, उसके हाथ में पलाश की लकड़ी का दंड देते थे। पलाश की लकड़ी के दंड को छूने से उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति सुदृढ़ रहती। श्लोक कहता है एतत् पुष्पम कफम पित्तम, शरीर के कफ दोष को, पित्त दोष को, कुष्ठ दोष को अथवा दाह दोष को अथवा तृष्णा के दोष को, वायु दोष को और स्वेद दोष को, रक्त के दोष को और मूत्र रोगों को, ये नष्ट करने वाला क्या है? पलाश के पुष्प, पलाश के दंड, पलाश के मूल, पलाश की चीजें, पलाश का एक आध फूल घोटकर गर्भिणी को दूध के साथ मिला दिया जाए तो ऐ है गोरा 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 काना नहीं, गोरा 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 कन्हैया पैदा हो। तो जिनको गोरा बच्चा चाहिए उनकी बात भी कह दी, और जिनको शारीरिक संतुलन चाहिए, पित्त दोष से मुक्ति चाहिए, कफ के दोष से मुक्ति चाहिए, शरीर में दाह और तृषा गर्मी में होगी उससे मुक्ति चाहिए, तो उनको पलाश के पुष्पों के साथ उनके साथ होली खेलो खिलाओ, और पलाश के पुष्पों का रंग कल हम लगाएंगे, वही रंग के पैकेट देंगे कि घर भी ले जाना। पाउच बनवाए हैं और हर शिविरार्थियों को एक पाउच प्रसाद रूप में निशुल्क दिया जाएगा, ताकि उनके कुटुंबी भी थोड़ा लगाएं और उनके भी वात पित्त कफ जनित रोग निवृत्त रहे, वे भी निरोगी रहें, पड़ोसी भी लगाएं वे भी निरोगी रहें। वैसे तो आदमी का स्वभाव है जो नकारात्मक विचार करता है, क्या करें गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, परेशान हो गए, सर्दियों में के ठुठर रहे हैं, बारिश में के कीचड़ हो रहा है, लेकिन वेद कहता है कि भाई सर्दी का भी मजा ले, वसंत का भी मजा ले, बारिश का भी मजा ले, मान का भी मजा ले और अपमान का भी मजा ले, फिक्र दिल में चाहे सौ लगी रहे, फिक्र दिल में चाहे सौ लगी रहे, आशिक की ये शर्त है कि हरदम खुशी की लौ लगी रहे। फिक्र चाहे दिल में सौ लगी रहे, आशिक की ये शर्त है कि हरदम उससे लौ लगी रहे। श्री कृष्ण जेल में अवतरित हुए, जन्मते ही पराए घर लिवाए गए, और छठे दिन पूतना जहर लेकर आई, फिर भी कृष्ण फरियाद नहीं करते। एक महीने के हुए तो धेनकासुर, छटकासुर, बकासुर आदि आना शुरू हुए। 17 साल के श्री कृष्ण उपद्रवों के बीच जीते रहे, निहत्थे कृष्ण ने इतने विघ्न बाधाओं को कुचला, और कृष्ण कभी रोए नहीं, सदा मुस्कुराते रहे। मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, उनकी वसंत ऋतु बढ़िया हो गई, उनका ग्रीष्म ऋतु बढ़िया हो गया, उनकी वर्षा ऋतु बढ़िया हो गई, उनका जीवन बढ़िया हो गया, उनका आना बढ़िया हो गया, उनका खाना बढ़िया हो गया, उनका सोना बढ़िया हो गया। कबीर जी ने क्या बात कही, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से, दिन दिन अधिक चली। साधु भाई सहज समाधि भली, आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। साधु भाई सहज समाधि भली, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, है, है, मैं कहूंगा कि मेरे साधक भी ऐसा ही करे। आज रात से ही ये मंत्र चालू कर दो, जब भोजन करो ना ठाकुर जी को खिलाओ, और ठाकुर जी भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर अन्न को पचाता हूं। अन्न को पचाते खाते तभी तो पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, प्राणापान समायुक्ता, पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं खाता हूं ये भ्रांति छोड़ दे, ए मेरे प्रभु लगे भोग मिटे रोग। ओम नारायण अर्पण। एक लड़का था, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अभी तुम्हारे बीच बैठा है, जयराम जी की, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो 10-11 साल का था लगभग, तो जहां रहता था सिद्धपुर में, उन कुटुंबियों के घर दीवार पर भगवान की मूर्तियां थी। वो लड़का क्या करता, रात्रि को जब भोजन करता तो पहला फोटो उस भगवान के नाम का ग्रास, फिर दूसरे भगवान, तीसरे, वो भगवान के भिन्न भिन्न अवतार और भिन्न भिन्न रूप थे माता जी, एक एक कोर सभी भगवान के नाम का वो भोग लगा देता। आखिरी में एक दो कोर बचता, बोलता इतना मैं खा लूं ना, खा लेता, पेट तो उसका भरता और दिल भी उसका भक्ति से भर जाता, और वो लड़का अभी तुम्हारे सामने बैठा है और नारायण का बाप लगता है वो लड़का। आए है बेदवाद माहुख ए बा, ये होली का उत्सव है भाई। ये उत्सव गरीब संकीर्तन करे, अमीर संकीर्तन करे, रक्त के कण पावन बनाए, अमीर अहम भूल जाए और गरीब अपनी संकीर्णता भूल जाए, और दोनों के बीच की जो बाह्य दीवारें थी वो हट जाए, और दोनों के बीच जो अंतरात्मा का सुख था वो उभरने लग जाए। इसी का नाम है होली धुलेटी उत्सव। एतत् पुष्पम कफम पित्तम कुष्ठम दाहम तृष्णाम अभी वातम स्वेदम रक्त दोषम मूत्र कृच्छच नाशयेत। ये सारे इतने सारे रोग केवल तुम्हारे केसू के फूलों से मिट सकते हैं। केसू के केसूड़े के फूलों में ये सारे गुण छुपे हैं। तो अपने यहां गंगाजल जो आया है वो हरिद्वार से नहीं, ऋषिकेश से नहीं, टिहरी से नहीं, उत्तरकाशी से नहीं, जहां से गंगा निकलती है गंगोत्री से, वहां साधक जाते हैं और भर के आते हैं बड़े बड़े केर में। और वो गंगोत्री का गंगाजल होगा, भगवान नाम सुमरण करते करते साधक बनाएंगे, और उसमें केसू के फूलों का रंग होगा, और कल चलेगी वह बड़ी पिचकारी, एक साथ 25,000-50,000 आदमी को रंग दिया जाए। एक है हंस दृष्टि, दूसरी है परमहंस दृष्टि, और तीसरी है श्री परमहंस दृष्टि। आप कौन सी दृष्टि से संसार में जीते हैं, आपकी कैसी नजर है संसार को देखने की। नजरें बदलेगी तो निजारे बदलेंगे, किस्ती ने रुख बदले तो किनारे बदलेंगे। आप सोच विचार की नजर वैदिक बना दीजिए, धर्ममय नजर बना दीजिए, ज्ञानमय नजर बना दीजिए, हंसमय नजर बना दीजिए, तो ये कलयुग आपके लिए दुखद नहीं होगा। आपके लिए वसंत ऋतु दुखद नहीं होगी, ग्रीष्म ऋतु दुखद नहीं होगी, शरद ऋतु दुखद नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूं कि मौत भी तुम्हारे लिए दुखद नहीं हो, ऐसा ज्ञान आपके वेदों में है। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, जिस मौत से दुनिया डरती है कबीर जी कहते मेरे मन आनंद है। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। अभी तो देह को खिलाना पिलाना संभालना पड़ता है, और गलती भी हो जाती कि ये मैं शरीर हूं, लेकिन हंस दृष्टि, परमहंस दृष्टि, श्री परमहंस दृष्टि, इन तीनों में से कोई भी दृष्टि अगर दृढ़ हो जाए तो आपका जीवन तो अमृतमय हो जाएगा, मृत्यु भी अमृत से कम नहीं होगी। अमृत नहीं मरते, मरता है वो मैं नहीं। बीमार होता है ये शरीर, मरता है ये शरीर, दुखी सुखी होता है मन, राग द्वेष होता है बुद्धि में, उसको देखने वाला हंस, हंस दृष्टि आपके जीवन में आए। आज तक जो होली सो होली, जो हो गया सो हो गया। होली तो हंस दृष्टि क्या है? तुलसीदास ने कहा, संत हंस गुण गहई पाया परिहरिवारी विकार, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखई, उभय देखई सो अविवेक। जब तुम संसार को सच्चा मानकर देख चलोगे तो कहीं गुण देखेंगे, कहीं दोष देखेंगे, कहीं अपने देखेंगे, कहीं पराये देखेंगे। गुण और दोष से भरा हुआ सारा पचड़ा लगेगा। हाय, ये जगत कैसा बनाया भगवान ने, ऐसी दुनिया क्यों बनाई? अरे भैया, भगवान ने क्यों बनाई ऐसा करके तू परेशान मत हो, तू भगवान की इस दुनिया का फायदा उठा। संत हंस गुण गहाई पद पाया। जैसे हंस नीर शीर को अलग कर देता है, नीर अलग और खीर दूध अलग, ऐसे ही चिंता परेशानी और बीमारी पैदा करने वाले खान पान कर्म और विचारों को तू अलग कर दे, स्वास्थ्य तंदुरुस्ती भक्ति और मुक्ति वाले विचारों को तू चिपक जा, ऐसा तू हंस बन जा। तू हंस दृष्टि ले, हंस दृष्टि का मतलब कि शरीर पांच भूतों का है, इसे जल वायु रोटी पानी कपड़ा आवास चाहिए, पंच भौतिक शरीर को पंच भौतिक वस्तु चाहिए, लेकिन इसकी आवश्यकता नपितुली है। इच्छाएं फालतू की होती है, इसलिए तू परेशान होता है। इच्छा बढ़ा मत, आवश्यकता पूरी करने में ज्यादा जोर और ज्यादा बेईमानी या झूठ कपट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आवश्यकता बढ़ाता है, इसलिए तो परेशान होता है। आवश्यकता तो नपितुली है, लेकिन इच्छा को आवश्यकता का जामा पहना देता है। तैन शाक जोइए, आहू तो जोइए, आहू तो जोइए, आटलू तो करूं पड़े, आटलू तो करूं पड़े, ऐसे करते करते तू शरीर के साथ इतना जुड़ जाता है कि तेरे आत्मा का, दृष्टा भाव का, साक्षी भाव का, चैतन्य स्वरूप का, सुख ज्ञान और असंगता का आनंद तू भूल गया। इसीलिए तूने संसार को नरक में देखा और तू नरक में खदबद हो रहा है। तू दृष्टा बन। संत हंस गुण गहाई पाया। अपने गुणों का वाह वही हो रही है तो प्रभु को धन्यवाद दे, अपमान और विरोध हो रहा है तो सावधानी बरत और संसार से अनासक्ति कर, धन दौलत और साधन सामग्री है तो उससे दूसरों की सेवा कर, और कुछ भी नहीं है और ठन ठन पाल है तो इच्छा वासना को मिटा और मुक्त हो जा। तू हंस दृष्टि ग्रहण कर। बापू जी आशीर्वाद करो, मैं इतना करूं, इतना पढ़ूं और फिर बहुत दान करूं। अरे इतना करने के बाद बहुत दान करेगा, उसके बाद तेरे को सुख चाहिए तो अभी से ही सुख स्वरूप में गोता मार। ऐसा करूं वैसा करूं बहुत दान करूं, बहुत दान करने से भगवान मिलेंगे? नहीं, तेरी बेवकूफी जितनी छूटेगी उतना ही भगवान का सुख प्रकट होगा। बहुत है तो बहुत दान कर, कम है तो कम कर, और नहीं है तो तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं। माल पर जकात लगता है, इनकम पर टैक्स लगता है, जब तू ठन ठन पाल है तो फिर काय करो, चिंता कर। तेरे पास कुछ है तो कुछ में से कुछ, अरे एकदम नहीं है तो फिर कुछ, तो मैं ऐसा बनूं वैसा बनूं वैसा बनूं, बन कर ये करूं वो करूं फिर कहीं भगवान मिले? नहीं, ये पाऊं, ये करूं, ये भोगों की इच्छा छोड़कर अभी जो परमेश्वर बैठे हैं उससे तू जब करते करते ध्यान करते करते प्रीति का माधुर्य ले। हंस दृष्टि। दूसरे होते परम हंस। हंस दृष्टि वाले होते हैं, दृष्टा भाव में रहते, साक्षी भाव में रहते। और जो परमहंस दृष्टि वाले महापुरुष हैं उनके नजर में दृष्टा और दृश्य दो नहीं रहता। उनके लिए तो जड़ चेतन जीव जगत सकल राम मही जानी होता है। और श्री परमहंस उनके हृदय में तो नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन ज्ञान धारा, नित्य नवीन प्रकाश। जो नित्य नवीन ज्ञान से जुड़े हैं उनको अंदर से ही नित्य नवीन सुख, नित्य नवीन ज्ञान और नित्य नवीन आरोग्य के कण मिलते रहते हैं। नहीं तो आरोग्य लोग अस्पतालों में चक्कर काटकर ढूंढते रहते हैं, कैप्सूलों और इंजेक्शनों से आरोग्य के लिए भटकते रहते हैं। खुशी के लिए क्लबों में जाते हैं, भोग भोगते हैं, ये पिया वो खाया वो खाया वो खाया, और जल्दी बीमार होते, अकाल मरते। और ज्ञान के लिए किताबें पोथे खोलते रहते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रीति से जुड़े हैं उनके अंदर तो नित्य नवी प्रेरणा, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन रस, ऐसे महापुरुष श्री परमहंस होते हैं। वे जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। तो फिर से इस बात को याद रखो, उन महापुरुषों के स्वभाव की ये बात है। फिक्र दिल में चाहे सौ लगी रहे, आशिक की शर्त है कि हरदम लव लगी रहे। ये होली का उत्सव, चिंता शोक मेरे तेरे की अहंता ममता मिटाकर सहज जीवन जीने की खबर देने वाला उत्सव है। अब यहाँ तो संख्या अति है, अहमदाबाद आश्रम में कम संख्या होती तो लक्कड़ खींच प्रोग्राम रखते, रस्सा खींच प्रोग्राम रखते थे। जय राम जी की, 10-20 बच्चे इधर, 10-20 बच्चे उधर, रस्सा खींच, बड़ा बांस लेते, लक्कड़ खींच प्रोग्राम, कूदना फांदना हास्य विनोद। आप तुमको यहाँ क्या कराएं? यहाँ तुम्हारे लिए सोच बैठा हूँ कि शिव मंदिर से तुम नीचे उतरो और नदी में जाकर राउंड मार के फिर इधर से सीढ़ियों से बाहर गुजरो, हो जाएगी तुम्हारी कसरत। उसके पहले तुम यहाँ कई बार हरी बोल करके खड़े होकर तुम्हारी कसरत भजन भजन हो गया है तो उसका भी आग्रह हमारा नहीं, लेकिन हम ये बात तो जरूर चाहते हैं कि तुम्हारी नजर बदल जाए कि बापू जी क्या करे, चश्मा पहरे, चश्मा पहरे ना तो क्या करे, चश्मा उतार देना, अर्थात सोचने का तरीका बदल जाए। यस्य ज्ञानमयं तपः, ज्ञान संयुक्त सोच, मैं इधर जाऊं तो सुखी होऊंगा, उधर जाऊं अब मैं ये करूं, अब मैं वो करूं, अरे जहां करना है जहां जाना है वहां गोता तो मारता नहीं। भटक मुआ बेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत उस आनंद को सुख को खोज रहा है, खोजत खोजत युग गए पांव को उस घर आए। मैं करूं ते वो आंधड़ो पण नहीं करे हो, घर में कोई बैठो तो गर्दनी ने हो, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, वो तुम नजर ले लो ना, गुरुओं से संतों से नजर सीख लो। अब गुरु तो नजर बदलना चाहते हैं और तुम तो गुरु को ही बदलना चाहते हो, लो ऐ भर के आए डिब्बे, ए ले आए मुकुट, लो गुरुजी अब बदलो, तुम काली टोपी गोद में रखो, ए पैरो ए पैरो, ए खाओ ओ खाओ ओ खाओ, हमारा तो आप हजम नहीं करते और तुम्हारा हम हजम करके क्या टुनटुन बनेंगे, टुनटुन के मौसा बनेंगे। इसीलिए ये प्रसाद बरसाद लाना या बापू को प्रसाद भेंट करना ये सब भूल जाओ, वो दिन गए, वो दिन गए। नारायण हरि, नारायण हरि, होली जो होली सो होली, जो हो गई सो हो गई, पहले लाइनें चली चली, जो कुछ मिला दिया दिया खाया। अरे जूनो जूनो बापू पहला मलता था बात करता था, अभी तो जो अपन बनो होली, जो हो गया हो गया। जेल का वरिष्ठ अधिकारी डीआईजी न्यायाधीश जेल में राउंड लेने गए, जेलर ने कहा सर मैंने एक प्रोग्राम रखा था जेल में। बोले वास्तव में तुम सचमुच गजब के धर्मात्मा आदमी हो, क्या रखा था? बोले सर क्या बताएं सर बहुत बड़ा प्रोग्राम था। बोले आखिर क्या था? कैदियों का जीवन बदल जाए सर, मैंने ऐसा रामलीला का प्रोग्राम। ओह फाइन वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जेलर साहब लगता है कि कैदी तुम्हारे जेल से जब निकलेंगे तो नेक इंसान भारत को तुम दोगे। जेलर कहता है साहब सच्ची बात है लेकिन एक गलती हो गई। बोले क्या बात है? बोले रामलीला में जो हनुमान बना था वो संजीवनी लेने गया है, अभी तक नहीं लौटा है सर। तीन दिन हो गए सर, रामलीला का प्रोग्राम तो 3 घंटे का था, वो संजीवनी लेने हमने उसको भेजा, अभी तक नहीं लौटा। अब जेल से निकला कैदी, संजीवनी के निमित्त जेल से निकला कैदी वापस क्यों आएगा? वो तो पंछी उड़ गया। मैं पहले विश्वास नहीं करता था, भूत प्रेत ये वो होते हैं कि नहीं होते हैं, चलो कहीं उनको तो ऐसे कल्पना होती है, कहीं उनको भय होता है। लेकिन बाद में विरमगाम के पास मांडल में मेरी कथा थी, रात्रि को 8:30 बजे मैं जलपान करके सुन्नी सड़क पर, हाई स्कूल में मेरा निवास था, सुन्नी सड़क पर टहलने को गया अकेला। तो 30-40 कदम आगे मेरी दाहिनी ओर एक सफेद वस्त्रधारी, यूं कहें कि सफेद छाया पुरुष जा रहा। मैं सोचा किनारे किनारे कौन चलता है, मैं तेज चला तो वो तेज चला, फिर सोचा कि ये क्या है, ये मेरी भ्रांति है, हो सकता है कि सड़क का साइन बोर्ड लगाते ना आरटीओ वाले, वही होगा। ये ऐसा कैसा एकदम किनारे किनारे, भ्रांति तो नहीं हो गई? और सचमुच में मैं आगे गया तो एक प्रकार का ऐसा वो सड़क पर साइन बोर्ड लगाते ना, तो वो साइन बोर्ड भी देखा, मैं गया यही होगा। चलो जब वहां से मैं वापस लौटा तो फिर उसी जगह से सफेद सफेद एक छाया पुरुष रोड क्रॉस कर रहा था। मैं गए तो ही है, तो मैं जल्दी को चला तो खाया था तो ओडकार आया, और ओडकार आती तो ओम बोलता हूं मैं, तो ओडकार के साथ ओम बोला तो मानो उसको ऐसा 303 का फायरिंग हुआ, मेरे ओम के गुंजन से कि इतना तेजी से वो छाया पुरुष दौड़ा के सामने सड़क के उस पार, जो बबुल के जंगली पेड़ थे वो यूं हिले एकदम रुक गए। मैं मंडल की स्कूल में जो सेवक बैठे थे उनको बात की, गांव के कुछ आगेवान आए थे, तो सारे गांव के अच्छे अच्छे लोग चारों तरफ कॉर्डन बनाकर खोजने लग गए कि कौन है। मेरे को भी पता नहीं था कि भूत होगा, अल्या चियो से अल्या कौन अंताई जियो से अल्या बाप जी बुलावे से तुम्हारू हारू था अल्या चियो से अल्या बोलो कि। धीरे धीरे फिर किसी ने पटेल भाषा में शेर की और सवा शेर की भी सुनाई कि अल्या दीवार बोलो कि अल्या चियो से। ये होली का उत्सव है इसलिए ऐसे प्रसंग भी मुझे बोलने में संकोच नहीं होता है। जयराम जी अल्या चियो से। गांव के बूढ़े बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि बापूजी यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, तब से यहाँ कोई युवक प्रेत आत्मा भटकता है, कभी कभी तो ड्राइवर के नजीक नजीक चलता और ड्राइवर भी वल हो जाते हैं और गाड़ी अनबैलेंस हो जाती। मैं समझ गया कि प्रेत किसी को डराकर अथवा किसी को मिसगाइड करके अपना विनोद करता होगा, या कोई मर जाए तो अपनी कंपनी बनाता। सुलेमान प्रेत की कथा की कैसेट तुमने सुनी होगी, तो कई ऐसे प्रेत होते हैं जो सात्विक जगहों में रहते हैं, कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो राजसी जगह पुराने घर खाली घरों में रहते हैं, या अपने कुटुंबियों के घर में या किसी के शरीर में घुस जाते हैं। कुछ तामसी प्रेत होते हैं, तामसी प्रकृति के, आनंद में कोई परिवार है वो लोग आए और बोले कि हमारे कुटुंब की फलानी व्यक्ति मर गई है और वो इसमें घुस गई है और इसको खूब खूब नाखूनों से कर देती है। मैं कह कैसे? बोले बापूजी जब कभी भी आ जाते तो थोड़ी देर में बोले हाँ इसको लग गई है। और वो भाई ने मेरे को अपने घुटने तक के पैर दिखाए और खून 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 नाखून नाखून नाखून। बोले कभी कभी घर में केरोसिन। कई ऐसे प्रेत होते के घर में पत्थर कंकड़ उछलते, घर का फर्नीचर आकाश में उड़ने लग जाता है, और किसी में घुस जाते, कुछ का कुछ बोलते। लेकिन कुल मिलाकर ये प्रेत योनियां कैसे बनती है कि जिनके जीवन की सही दिशा नहीं है, ये खाऊं तो सुखी हूं, ये भोगूं तो सुखी, ऐसा बनूं तो सुखी, ये करते 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 वासनाओं के जाल बुनते बुनते अंत में मर जाते हैं, अवगत होके मरते हैं, तो फिर उनकी वासना उनको भटकाती रहती है, फिर किसी के अंदर घुसते हैं अथवा किसी के घर में घुसते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, औरों को परेशान करते हैं। अपना अमृतसर का आश्रम, वहां जो लड़का रहता था अभी यहां आया है, उसने बताया कि बापू कुछ दिन पहले अमृतसर में अपना जो आश्रम है वहां रात्रि को जो लड़का चौकी करता है उसको प्रेत ने पकड़ लिया। तो लड़का चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हमने सोचा क्या है, तो हमने दूसरे साथी को उठाया, और वो कुछ कर कुछ करने लगा। हम घबराए, अब रात का समय क्या करें। तो आरोग्य निधि पुस्तक में प्रेत भगाने का जो मंत्र था वो मंत्र पढ़कर पानी में देखा। तो एक हमारा साथी तो मंत्र वाला पानी, आरोग्य निधि पुस्तक में जो प्रेत भगाने का मंत्र है वो मंत्र का पानी बना रहा था, और वो जिसको प्रेत लगा है वो हाफ रहा है, तो उसको हमने हैंडपंप से पानी पिलाया, तो उसने पिया पानी। जब ये पानी मंत्र के लिए आया तो उसने बोला ये पानी नहीं पीऊंगा मंत्र वाला। जो ही जबरन उसको पानी छांटा और मुंह में पिलाया तो वो दौड़ते दौड़ते जिसमें लगा था उसको दौड़ा के गिरा के प्रेत सदा के लिए भाग गया, और अपना आदमी बिल्कुल ठीक है, अप टू डेट है। तो इन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने कैसे मंत्र खोज रखे हैं कि अमुक मंत्र जपने से आपके स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर, क्योंकि प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर पर तुम्हारे मंत्र के आंदोलन पड़ेंगे, और वो सूक्ष्म और कारण शरीर में बैठकर आपको नचा रहे हैं, तो वहीं उनको मंत्र के प्रभाव से जो अभिमंत्रित पानी है वो फायरिंग करेगा, तो उनको भागना पड़ेगा, इसलिए बोलती है हम पन नहीं पिएंगे। अहमदाबाद आश्रम में भगवान दास चश्मे वाला बूढ़ा और उसका बेटा लंगड़ा, वो चप्पलों की सेवा करते हैं, थोड़ी आजीविका भी करते हैं, नारायण जानता हूं उनको, ठक्कर नगर। उनकी पत्नी को 40 साल पुराना कोई सैयद था, बड़ा खतरनाक प्रेत, शादी के पहले ही घर में था, और शादी को करीब 35 साल 40 होने को था। सारा परिवार तबाह हो गया, सब जगह गए, ये क्या वो क्या, कुछ नहीं हुआ। और वो जिस किसी भूए भूपे के पास ले जाओ तो बोलता है मैं सैयद हूं, तेरे को तो चबा दूंगा हराम जादे भूए के बच्चे, और सचमुच भूए बाप पुकार जाते थे। अब मैं प्रेत निकालने का धंधा नहीं जानता हूं, खुदा की कसम, मैं भूआ भोपा का विधि विधान नहीं जानता, लेकिन ये ऋषियों के मंत्र मेरे को पता था। मैंने इस मंत्र का प्रयोग करके पानी छिटवाया तो ऊंचा नीचा हो, मेरे को भी सुनाने लग गया। मैं देखा कि ये ज्यादा हरामी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं अपने अहमदाबाद आश्रम में उन दिनों में थोड़ा समय मिल जाता था, प्रवृत्ति इतनी सारी विस्तृत नहीं थी, एक ब्राह्मण रहता था लड़का, मैंने कहा तो यज्ञ का आयोजन चालू कर, और प्रेत वाले बाई को बिठाया और मंत्र पढ़ा जो आरोग्य निधि में है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वो बोले मत करो बाबा, ये कर दूंगा, मार दूंगा, मैं क्या जगत की बच्चे तेरी अच्छी तरह। मैं भी बंडल छोड़ता रहा, वो भी आंखें दिखाता रहे और बंडल छोड़ता रहा, मैं भी बंडल के महाबंडल उसको देता रहा। स्वाहा स्वाहा की एक मालाएं करीब करीब उन ब्राह्मणों ने पूरी की। अरे मैं जाता हूं, मैं क्या जाएगा लेकिन निशानी छोड़ के जाएगा आराम ज्यादा, फिर तू घुसेगा तो? बोले नहीं घुसूंगा, नहीं घुसूंगा। मैं क्या जाएगा तू निशानी छोड़ के जा? बोले निशानी छोड़ के जाता, मेरे को जाने दे, हे फकीर जाने दे, जाने दे। मैं कहा अच्छा जा, मूर्ति छका ये किया, मैं कहा उठ जा जा। तो भाई भाई के शरीर में था, भाई को लेके दौड़ा 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 गेट के बाहर महिला आश्रम के रास्ते मुड़ते वहां जाकर भाई को जोर से उसने फेंका, भाई वहां गिरी और वो किसी पेड़ में घुस गया। और भाई पिछले 40 साल पहले जो थी वो स्थिति में आई। डीसा का एक टेकचंद नाम का करियाना मर्चेंट आया था, मैं क्या बोल, इसमें से निकला है अब पेड़ में घुसा है, क्या ख्याल है तेरे को, चाहिए इसका मजा लेना है? बोले हाँ आ जाए कोई बात नहीं। मैं कह लेके देख मजा, तो पेड़ के पास गया, बोले सैयद मेरे में आ जाओ कोई बात नहीं। अब उस समय तो उसने मजाक करके कह दिया और घुस गया सैयद उसमें, अभी तक वो तोबा पुकार रहा है। टेकचंद करियाना मर्चेंट क्या, करियाना फरियाना तो गया उसका, ये वो तबियत बबियत सब गड़बड़। अब बोलता है साईं मैं क्या, तूने बुलाया क्या करे? फिर मंत्र दिया, आरोग्य निधि में है। तो ऋषियों के मंत्र कितने प्रभावशाली हैं और ऋषियों के उत्सव मनाने की रीत कितनी प्रभावशाली है और ऋषियों के ऋषि परमात्मा श्री कृष्ण का ज्ञान कितना दिव्य है और गोरखनाथ का वचन कितना सुहावना है, हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान आहरनिश कथी बो ब्रह्म ज्ञान खावे पीवे न करे मन भंगा कहे नाथ में तीस के संगा। अहमदाबाद में बहुत समय रहे तो जो ये उत्सव आता है त्यों मारवाड़ी लोग आहा लारी खींचते जाते और उत्सव में मनाते जाते, माल छोड़कर 10 5 15 लारी मणिनगर से कबूतर खाना लौटती तो लारी में लारी लारी में लारी एक रेलगाड़ी बन जाती सड़क पे, और सारे फागणे गाने वाले 2 4 लारी में सेट जाता है और ढोलक रखते और कान टेढ़ा करते थे फिर गाते फाग बरे 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 फागणियो आयो बड़ लाए थे गोपी ना से हे रे गोपी ना से रे गोपियो रा शाम रे। हाथ में देवी मगरे वासोली दोहे रे देवी मगरे वासोली दोहे बोरे 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 सांझ पड़ी दिन हाथ में देवी मगरे वासोली दोहे रे मगरे वासोली दोहे रे मगरे वासोली दोहे बोरे बोरे सांझ पड़ी मगरा माथे जीरे मगरा माथे मंदर है जी मगरा माथे मंदर है बैठ जाओ मंदर अंबारो है जीरे मंदर अंबारो है अंबारो है जीरे मंदर अंबारो है अंबारो है जीरे मंदर अंबारो है मंदर खनेरो लागे जीरे मंदर खनेरो लागे
फूल मरियो लावे हे रे बगी सारा फूल मरियो लावे रे बाग बोले रे बाग अंबारो हे सही।
वो तो गाते चले जाए
और पीछे लाल बस भूं भूं
अल्लाह मार बड़ा अल्लाह साइड अल्लाह मार बड़ा फगड़िया
भूं भूं
बाग बोले रे रे बाग बोले रे गड़ला ही थे गोपी ना से रे शाम है नी शाम है रे बोरे
सुनो
मणिनगर से चली बस 55 मिनट में पहुंचना है उसको वो 1 घंटा और 40 मिनट में पहुंची। कंट्रोलर कहता है कि सूज है सुई आधा नौकरी करवी छे नहीं ड्राइवर कंडक्टर तमने चार सीट मर से ड्राइवर कह सके तमने खबर नहीं कि होली आई छे फागणी आओ
बोरे बोरे बोरे
कूदना फांदना हास्य विनोद तो है लेकिन अंबारू आग बोले है फागणियो आयो है बड़ला ऐठे गोपी नासे है गोपियों रा शाम है कृष्ण की और अंबा की याद है शरीर का स्वास्थ्य और मन की भक्ति इसका नाम है होली को उत्सव। लेकिन कुछ जहां गांव होता है वहां गंदगी भी होती ऐसे कुछ असामाजिक विचार वालों ने इस पवित्र होली के उत्सव को भी मलिन कर दिया। शराब पीना कीचड़ उछालना जूते फेंकना अथवा तो केमिकलों के रंग से एक दूसरे के मुंह बंदर छाप बनाना ये बंदर छाप मुंह बनाने का उत्सव नहीं लेकिन वसंत उत्सव है। तो वेद कहता है वसंत आपके लिए सुखद हो। आप सामवेद का मंत्र पढ़िए वसंत इनु रत्नयो वसंत इनु रत्नयो ग्रीष्म इनु रत्नयः
ग्रीष्म इनु रत्नयः
वर्षापिनुः शरदो हेमन्तः
वर्षापिनुः शरदो हेमन्तः
शिशिरः इनु रत्नयः
शिशिरः इनु रत्नयः।